शिक्षार्थियों, इस कार्यक्रम में स्वागत है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ललित निबंध है, जिसमें एक छोटे से ठिगने से पेड़ के माध्यम से पूरे निबंध को खड़ा किया गया है। और परीक्षाओं में जो विषय दिए जाते हैं वे तो बड़े रुचिकर दिए जाते हैं, है ना? आपका प्रिय कवि है ना, दहेज एक समस्या,
समस्या।
तो ये तो सामान्य जीवन में जो सुनते हैं उस पर विषय विषय लिखा जाता है। और बच्चों को कहा जाता है कि आप 200-250 शब्दों में निबंध लिखें।
निबंध लिखे।
लेकिन जब एक साहित्यकार निबंध लिखता है तो उसका स्वरूप एकदम अलग होता है। अब यहाँ ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से एक छोटे से पेड़ को लेकर जीवन का महान दर्शन दिया है। वह वास्तव में देखने की बात है। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप देखते हैं कि आपके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो आप घबरा जाते हैं और ये लगता है कि हम मेरे ही जीवन में इतना ज़्यादा संकट है और हमसे अच्छे तो ये पशु पक्षी हैं जो स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, जिन्हें रोक टोक कोई करने वाला नहीं है।
जी
वास्तव में इसके पीछे समस्या ये है कि हमें जीने की कला नहीं आती है। अगर सही प्रकार से हमें जीना आ गया तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ इसी मूल बात को ध्यान में रखकर रचनाकार ने एक छोटे से पौधे को आधार बनाकर अपनी बात को प्रस्तुत
कहने का प्रयास किया है।
प्रयास किया है यहाँ
जी
पे। और हम यहाँ संक्षेप में देखेंगे कि वे किस तरह से अपनी बात को प्रमाणित करते हुए चलते हैं। अब वो बात तो शुरू करते हैं हिमालय के तराई में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उसके सौंदर्य वर्णन से, और वे कहते हैं कि वहां तो जैसे लगता है कि अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं में थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। वहां की मतलब सौंदर्यमयता से इतने प्रभावित हैं
प्रभावित
रचनाकार।
हैं।
और कालिदास का उदाहरण देते हैं कि कालिदास ने वहां जाकर जब रचनाएं लिखी होंगी तो उसके पीछे वहां का जो सौंदर्य है वही कारण रहा होगा, इसलिए इतनी सुंदर रचनाएं लिखी उन्होंने। वहां से कुछ दूरी पर अलकनंदा की स्रोत भी है, लेकिन जहाँ ये रचनाकार वर्णन कर रहे हैं शिवालिक का, वहां पे चारों तरफ सूखापन है और उस सूखापन के बीच दूब भी है, जो छोटी छोटी घास होती है वो भी सूख गई है, लेकिन रचनाकार को कुछ और ही नजर आता है। उस नीरस पहाड़ियों में भी रचनाकार देखता है कि एक ऐसा छोटा सा ठिगना सा पेड़ है जिसके पत्ते भी चौड़े हैं और फूलों से भी लदा हुआ है। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। ये देखिए कवि की अनुभूति, एक
अनुभूति।
रचनाकार की अनुभूति। द्विवेदी जी कहते हैं, पहचानता तो हूं, अवश्य पहचानता हूं, लगता है बहुत बार देख चुका हूं, पहचानता हूं उजाड़ के साथी, उजड़ा हुआ प्रदेश है वहां पर तुम ही तो साथी
तुम
हो,
ही तो साथी हो।
तुम्हें अच्छी तरह पहचान रहा हूं, नाम भूल रहा हूं। अब यहां देखिए कि रचनाकार अपने निबंध को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि उसको नाम नहीं याद आ रहा है। नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण नहीं होता है ना, उसका कर्म महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने उसके बाद कालिदास का उदाहरण भी दिया और जो अलग अलग कुटज के बारे में जहाँ जहाँ प्रसंग आए हैं उनका भी वर्णन करते चलते हैं। बीच में रहीम का भी वर्णन कर दिया उन्होंने कि रहीम कभी नाराजगी में उन्होंने दोहा लिखा कि वे रहीम बिरछ का जिनकर छाँ गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुण कुटज करीर। तो इस तरह का उदाहरण बीच बीच में दे के वो ये बताना चाहते हैं कि पौधा पेड़ तो ये छोटा सा है लेकिन इसके बारे में बातें कितनी हुई हैं।
इसकी महत्ता कितनी है।
हर जगह संस्कृत साहित्य में उसको कुटहारिका कहा गया, कुटकारिका कहा गया, जिसको दासी कहते हैं, ये सारे संदर्भ वो देते जा रहे हैं, अपनी बात को तुरंत नहीं कह रहे हैं वो, अभी कुटच पे ही चल रहे हैं। फिर संस्कृत भाषा में फूलों फलों और खेती बागवानी के जो शब्द हैं वो आग्नेय भाषा परिवार से लिए गए हैं, मतलब वो इतिहासों में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में जो जातियां हैं उसका नाम कैसे हुआ है, सारी बात बताते हुए चलते हैं। लेकिन उनको तो आना था मुख्य रूप से कुटज पे। तो ललित निबंध की क्या खूबी होती है कि वह बाज पक्षी की तरह होता है, वह देखता रहता है, घूमता रहता है कि उसका शिकार कहाँ है, और जहाँ शिकार होता है झपट्टा मारता है वहाँ। तो यहाँ रचनाकार भी चारों तरफ विषय को घुमाते हैं लेकिन फिर अपने विषय पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। अब ये शब्द देखिए, अपराजेय जीवनी शक्ति, जो पराजित न हो वैसी जीवनी शक्ति। जैसे शुरू में मैंने बताया कि शिक्षार्थी जो है छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, लेकिन यह एक प्रतीक है कुटज
कि विषम परिस्थितियों में आप
किस तरह से लहलाता है वो है। आप जो है कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें भी खुश रह सकते हैं, और इसे सीखना चाहिए कुटज से। उन्होंने फिर बताया कि दुनिया भले ही उसको भूल गई हो लेकिन आज भी उसको देखकर मुझे ये लगता है कि उसमें कितनी कठिन जीवनी शक्ति है, विल पावर कितनी ज्यादा है उसकी। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है, और यह उनको लगता है कि यह भगवान महादेव की तरह समाधि लगाकर बैठा हुआ है वहां पे। हर जगह पथरीली जमीन है, नदियां बह रही हैं, और उसी बीच में यह जो हमारा चिर परिचित दोस्त कुटज है वह आसन लगाकर बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए वो कहते हैं कि जीना चाहते हो, प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों से, कठोर पाषाण को भेद कर, कठोर जो धरती है उसको भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। उसकी जड़ कहाँ जाती होगी, जब चारों तरफ वीरान है तो वो चट्टानों के भीतर से ही जड़े तो अंदर जाती होंगी, जिससे वह जल ग्रहण करता होगा। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल करो। कितना मतलब एक तरह से
जो झारूपन भी दिखता है कि कैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए।
हाँ, उसके लिए कितने अच्छे उदाहरण दे रहे हैं ये। आकाश को चूम कर अवकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। रचनाकार का देखिए कि भाषा के माध्यम से वो किस तरह से एक क्या कहते हैं वो
जीने का एक मादा पैदा
कर रहा है वो, है ना। फिर आगे कहते हैं वो कि दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है, जीना आसान नहीं है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। देखिए क्या बताना चाहते हैं वो, प्राण ढाल दो जिंदगी में क्या क्या मतलब है कि अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, आपका पूरा अस्तित्व उसमें समा जाए, है ना। क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है कि जी रहे हैं, जैसे अधिकांश लोगों से आप पूछेंगे,
दिनचर्या एक बस कहते ना, खाना पूर्ति हो रही है,
वही ना। आप किसी से पूछेंगे कि और क्या चल रहा है, अरे बस जी रहा हूं, तो ये निराशावादी दृष्टिकोण है। वास्तव में अगर जीवन में उत्साह नहीं हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा है उत्साह, और उसमें बताया है कि व्यक्ति जीवित उसी से रहता है, अगर उसके भीतर उत्साह नहीं है तो मृत प्राय है।
जीने की ललक बहुत जरूरी है।
और यहाँ भी वही कहते हैं वो, सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। यहाँ सिद्धांत भी बताते हुए चलते हैं, कुटज क्या केवल जी रहा है, पूछते हैं फिर, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश देता नहीं फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामत नहीं करता, आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, ये जो लोग करते हैं उसका बता रहे हैं, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोरता, बगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है, कहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। ये देख रहे हैं कितना बढ़िया उदाहरण उन्होंने शांति पर्व महाभारत से दिया है भीष्म का। अब रचनाकार अपनी बात को साबित करने के लिए कितने संदर्भ लेते हैं। कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से प्रिय से अप्रिय से विचलित नहीं होता होगा, कुटज को देखकर रोमांच आ जाता है। कहां से मिली है अपराजित स्वभाव अविचल जीवन दृष्टि उसको, ये सोच रहे हैं वहां पे देख के कुटज को। अब देखिए इसी बात के क्रम को वो आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या कहते हैं कि जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे का उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। ये सिद्धांत नहीं है,
बिल्कुल सही कहा जरा,
है ना। कहते हैं कि लाइफ फिलोसॉफी हमें लिटरेचर में ही मिलती है, कौन बताएगा हमें जीवन के सिद्धांत के बारे में। यहाँ हर पंक्ति में जैसे लगता है कि वो अपना पूरा दर्शन दे देना चाहता है रचनाकार, और तरह तरह से उदाहरण से उसको परिपुष्ट भी करता चलता है। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए, सुख पहुंचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है
जी।
अब देखिए अंत में कि वो क्या कहते हैं, कुटज अपने मन की सवारी करता है। कितनी अच्छी लाइन है, अगर हम अपने मन की सवारी खुद करने लगे तो समस्या कहाँ है? मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, इस तरह से वो इसका आभार भी प्रकट करते हैं कि तुम्हें देखकर हमें जीवन में कितना उल्लास हुआ, कितना प्रेरणा मिली है
ना।
तो ये वास्तव में विद्यार्थियों को ऐसे निबंधों को पढ़ना चाहिए जो वास्तव में जीवन बदलने वाले हैं।
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर, और जीवन बदलने वाले हैं, और ये खाली एक जो कहते हैं ना निबंध नहीं है, जीवन का बहुत ही खूबसूरत यथार्थ प्रकट करते हुए ये निबंध होते हैं।